ओम शांति। जैसे कहावत है कि सागर को सारे सागर को अगर शाही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारे धरती को कागज बनाओ, और जो ज्ञान सागर बाप ज्ञान देता है उसको लिखना चालू करो, तो लिखना पूरा नहीं कर सकते हैं। भले कागज कम हो जाएगा पर लिख नहीं सकते, इतना अथाह ज्ञान दिया है बाबा ने। परंतु फिर ऐसे सागर को गागर में समाना है, तभी तो गायन है ना शास्त्रों में, चिड़ियों ने सागर को हप किया। तो आत्मा चिड़िया है ना, छोटी सी आत्मा है, तो उसमें सारे सागर को समाना है। तो ऐसे सागर को समाने का तरीका क्या है, तो बाबा ने बता दिया है, अगर हम तीन बिंदी और कुछ नहीं, तीन बिंदी याद करें तो उसमें सारे ज्ञान का सार है। अगर आपको और कोई ज्ञान की बात नहीं याद आवे ना, सिर्फ ये तीन बिंदी याद कर लो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये तो अनपढ़ भी याद कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम देखते हैं ना, आत्मा बिंदी तो ठीक है, वो तो सबको याद रहता है, मैं आत्मा बिंदी हूँ, उसमें तो ठीक है। और बाबा बिंदु भी याद रहता है, परंतु जो तीसरा जो बिंदु है ना, उसमें हम डीले हो जाते। चंद्रमणि दादी सदैव कहती थी कि दो बिंदु लगाने में ब्राह्मण बहुत होशियार हो गए, बाकी जब तीसरा बिंदु जो है ना उसमें बिंदु लगाने जाते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, कभी आश्चर्य सूचक चिन्ह बन जाता है, कभी कमा हो जाता है। तो अभी हमको इसमें प्रवीण बनना है, बनना है ना। बाबा ने भी यही काम दिया है, कौन सा काम दिया है, होमवर्क, एक सेकंड में बिंदु लगाना है, माना फुल स्टॉप, सिर्फ स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जैसे किसी कार का ब्रेक पावरफुल होता है ना, वो जब ब्रेक लगाते उसी समय लग जाता है। तो आप सबकी ब्रेक पावरफुल है, बिंदु लगाने में कितना समय लगता है, सेकंड लगना चाहिए, परंतु लग जाता है कभी घंटा, कभी दिन, कभी मास। तो इसके लिए हमको बाबा ने दूसरा होमवर्क भी दिया है, उसके लिए हमको क्या फिनिश करना है, व्यर्थ को फिनिश करना है, व्यर्थ को खत्म करना है। जब तक व्यर्थ को हमने खत्म नहीं किया है, तब तक एक सेकंड में बिंदी नहीं लग सकता। और एक सेकंड में जो बिंदी लगाने को जिसको आता है, वही तीव्र पुरुषार्थी है। तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बहुत सहज है, जो बात हो गई, आज भी बाबा ने क्या कहा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, हो गया ना, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। जब ये तरीका अगर हमको आ गया है, तब हम समझ सकते हैं कि हम पुरुषार्थ में बहुत आगे जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ एक बातें हम बुद्धि में रखें, जिसके आधार से हम इस साल में पुराने साल पूरा होने के पहले प्रवीण बन जाए। माताई भाई और कोई बातों में मुश्किल लगे भी ना, इस बात को प्रवीण बनने में कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, हमको कौन सी बात बुद्धि में पक्की रखनी है, जिसके आधार से हम एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना समय लगता, बाबा कहो तो 1 सेकंड हो गया। तो उसके लिए हमको ड्रामा के नॉलेज पर हमको बहुत पक्का रहना है। बाबा में निश्चय है, अपने में निश्चय है, परिवार में भी निश्चय है, परंतु ड्रामा में निश्चय नहीं है, तो 1 सेकंड में बिंदी नहीं लग सकता। और जिसका ड्रामा में पक्का निश्चय है, वो कैसे हमको पता? तो उसके लिए बाबा ने एक स्लोगन बताया है ना, ड्रामा में पक्का रहने के लिए कौन सा स्लोगन बाबा ने बताया है? जो अभी तक ड्रामा में हो चुका है वो अच्छा है, जो हो गया है ना वो अच्छा है, बुरा भी अच्छा है। और जो अभी हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और कल क्या होने वाला है? अच्छे से अच्छा। जब ये बात याद रहेगा ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला है और अच्छा, तो अच्छा अच्छा में कभी क्वेश्चन नहीं उठता। जब कोई बात अच्छी नहीं होती है तो क्यों, क्या, कैसे, अच्छा है तो फुल स्टॉप जल्दी लग जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात हम ये बुद्धि में रखें कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण ही कल्याण है। जिसके बुद्धि में ये पक्का निश्चय है वो ही बिंदु लगा सकते। समझ में आ गई माताओं को? ड्रामा में पक्का निश्चय। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, आश्चर्य नहीं। और दूसरी बात कौन सी हमको बुद्धि में रखना है? अगर हमको फुल स्टॉप लगाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सर्वशक्तियों की फुल स्टॉक होना चाहिए। सब शक्तियां हमारे अंदर एकदम फुल हो, कोई भी शक्ति हमारे अंदर मिस ना हो। क्योंकि जो शक्ति हमारे में मिस होगा ना, उसके बारे में ही हमारे सामने परीक्षा आएंगे। कभी कभी हम सोच लेते हैं ना, 7 शक्ति हमारे पास है, सहन शक्ति की थोड़ी सी कमी है, कोई हर्जा नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, हमारे सामने वही परिस्थिति आएंगी जिसमें हमको सहन करना पड़ता है और हम सदैव फेल ही हो जाते हैं। तो इसलिए हमको समझ जाना चाहिए, बार बार जो परीक्षा एक बात के बारे में हमारे सामने आती है ना, वो हमारे में कमी है। ड्रामा हमको मदद कर रहा है कि तुम इसी शक्ति के ऊपर ज्यादा मेहनत करो। पर कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं, अगर किसी के द्वारा समझो सदैव हमारा उसको अच्छा नहीं लगता है, हमारे ग्लानी करते रहते हैं, हमारे नुक्स ही देखते रहते हैं, हम समझते ये व्यक्ति को मैं शायद मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए मैं जो करती हूँ वो उसको पसंद नहीं आता है, कि बार बार कुछ न कुछ कहता रहता है, तो हम समझते कि गलत। परंतु ये परीक्षा क्यों आती है हमारे सामने? हमारे अंदर वो शक्ति की कमी है। जिसके अंदर धीर्यता नहीं हो उसके सामने वही परिस्थिति आएंगी, वो जो जिसमें उसको धीर्यता रखनी पड़े, वो समझते जल्दी जल्दी हो जावे, वो काम जल्दी नहीं होता है, वो फिर उसको गुस्सा आता है क्यों बार बार हमको ये परीक्षा आती है। माना ये आपको सिग्नल यानी इशारा दे रहा है कि आपके अंदर धीर्यता की कमी है, उसको धारण करो। तो जब हम उसके बारे में मेहनत करके उसको फुल कर देते हैं ना, तो कोई भी बात हमारे सामने आएंगी तो हम 2 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इसलिए हमको अभी से सब शक्तियों को जमा करना है। और सर्व शक्तियों को जमा करने का साधन क्या, कि ऐसा नहीं कि हम ऐसे समझ ले कि हमारे अंदर सब शक्ति है, नहीं, हमको रिहर्सल करना है। जब भी हमारे सामने कोई भी बात नहीं भी हो ना, तो हम ऐसे अपने अपने आप के अंदर विजुअलाइज करें, अपने सामने ऐसे परिस्थिति को सामने लाए, ऐसे परिस्थिति आ जाए तो हम इसको कैसे सामना करेंगे। तो फिर जब प्रैक्टिकल परिस्थिति आएंगे तो उसको हम सामना कर सकते। जैसे योद्धे होते हैं ना, यहाँ भी हम देखते हैं ना, मिलिट्री वाले प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, कैसे शूट करना है। हम भी आज भी सुन रहे थे ना, कितनी गोली मार रहे थे सवेरे, माना वो ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली शत्रु सामने आ जाएंगे तो अगर आदत नहीं होंगे तो उस समय क्या करेंगे, तो उस समय प्रश्न उठेगा ना। तो इसलिए हमको अस्त्र शस्त्र से सदैव अपने को भरपूर करके रखना है। ऐसा कोई भी शस्त्र यानी शक्ति रूपी शस्त्र हमारे से कमी ना हो। तो आप देख लो, अगर फुल स्टॉप नहीं लगता है कोई भी परिस्थिति में, तो आपके अंदर कोई ना कोई शक्ति की कमी है। जिसके पास फुल स्टॉक होता है वो एकदम उसी समय उसी शक्ति का स्वरूप बन जाते, वो परिस्थिति से पार हो जाते। ये दूसरी विधि है। पहली विधि कौन सी सुनाई? ड्रामा में पक्का निश्चय, एक्यूरेट है, भले बुरा भी हो रहा है ना तो भी एक्यूरेट है। मैं एक छोटी मिसाल सुनाती हूँ। एक बारी साकार बाबा के समय एक भाई बॉम्बे से आया था मधुबन में, बाबा से मिल करके गया बॉम्बे स्टेशन में, फिर टैक्सी लेकर के, तो टैक्सी से उतरते समय वो गिर गया, उसका पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो वो घर जाने के बाद बाबा को समाचार सुनाया, बाबा हम आपसे मिल करके आ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसा हो गया। पता है बाबा ने क्या कहा? बहुत अच्छा, वो बता रहे बाबा को कि पांव टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, और बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा, उसमें क्या अच्छी बात है। बाबा ने उसको समझाया, देखो आप सदैव कहते थे, बिजनेसमैन था ना बाबा, हमको पुरसोत नहीं है याद करने का, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी। तो बाबा ने कहा अभी बहुत अच्छा हो गया, अभी तो घर में ही बैठना पड़ता है ना, खूब बाबा को याद कर सकते, सारे विकर्म को विनाश कर सकते। वो बहुत खुश हो गया। तो अगर आपके सामने परिस्थिति ऐसा आ जाए तो आपको कोई कहे अच्छा हो आप बीमार हो गए तो आपको गुस्सा आएगा, ये क्या कह रहे हैं, मैं बीमार पड़ी हूँ, ये कहते अच्छा हो गया। परंतु ये भी हमको कला सीखनी है, बुरा को भी अच्छा बना करके फिर उसको स्वीकार करना। तो दूसरी तरीका है फुल स्टॉक, सर्व शक्तियों को इसलिए चेक करते रहे, सब शक्तियां हमारी ऑर्डर में है या नहीं। अगर कोई शक्ति ऑर्डर में नहीं है उसका भी तीन कारण है। क्यों आपकी शक्ति आपका ऑर्डर नहीं मानते? एक तो कारण बाबा ने बता दिया कि आप सीट पर बैठ करके ऑर्डर नहीं करते हो। अपने स्वमान में रह करके, हम राजा हूं स्वराज्य अधिकारी होकर के ऑर्डर नहीं करते हो। और दूसरा है बाबा के आज्ञाकारी बच्चा नहीं है। आप बाबा की आज्ञा नहीं मानते ना, तो शक्ति भी कहती है मैं भी आपकी आज्ञा क्यों मानूं, मैं भी नहीं मानेंगी, तो कर्मों का हिसाब किताब। मैंने बाबा की आज्ञा को अवज्ञा किया तो फिर शक्ति हमारी आज्ञा को अवज्ञा करते हैं। तो अगर शक्ति ऑर्डर नहीं मानते, माना हम आज्ञाकारी नहीं हैं। और तीसरा बहुत अच्छा कारण बाबा ने बताया कि समय को बर्बाद करते हैं। जो समय को बर्बाद करते हैं ना, तो जिस समय हमको शक्ति चाहिए ना, तो उस समय समय हमारे से बदला लेना चाहते हैं। अभी हम आपको आपको ये शक्ति आने नहीं देंगे। क्यों? तुमने हमारी हमको रेस्पेक्ट नहीं दिया, समय को व्यर्थ गवाया है ना, तो वो शक्ति उसी समय नहीं आती है, थोड़े समय के बाद आता है। तो माना कि समय भी हमारे से बदला लेता है क्योंकि हमने समय को व्यर्थ गवाया। इसलिए तीनों बातें हमको चेक करना है। अगर हमने शक्तियों को ऑर्डर किया, वो शक्तियां हमारी ऑर्डर नहीं माने, तो ये तीनों में से कोई ना कोई कारण है। तो अभी से लेकर हम ऑर्डर करें वो शक्ति आ जाए, तो देखो फुल स्टॉप कैसा लग जाएगा। और तीसरी बात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा ने कई बार हम बच्चों को बताया है कि हमको ये भी एक कला सीखनी है, सेकंड में विस्तार को सार में लाना। जिसके अंदर ये कला है ना, कितने भी कोई बात विस्तार में चली गई हो, उसको एक सेकंड में सार स्वरूप बना देना, माना फुल स्टॉप लगाना। उसके लिए कौन सा मिसाल बाबा बताते हैं? कछुए मिसल। कछुआ क्या करता है, जब एक काम करता है, चलता है, अपने कर्मी इंद्रियों को बाहर निकलता है, जब काम पूरा हो जाता है तो अपने अंदर ले लेता है। तो हमको भी ऐसे विस्तार में जहाँ जाना है विस्तार में जाना है। जैसे किसी को कोर्स कराना है, किसी को ज्ञान सुनाना है, वो थोड़ी सार में सुनाएंगे, वो तो विस्तार में सुनाएंगे ना, तभी तो समझ में आएगा। परंतु कोई बात हो जाती है तो इसमें हम सभी होशियार है, छोटी बात को बड़ी बनाना, मसाला डाल करके, मिर्ची मसाला डाल करके, बना बना करके किसी को सुनाने का। परंतु नहीं, बड़ी बात भी हो जाए उसको ऐसे समा जाए ना जैसे कि हुआ ही नहीं। इसलिए हमारे अंदर समाने की शक्ति चाहिए और संकी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति चाहिए। तो जिसके अंदर ये होता है ना, उसको कहते गंभीर व्यक्ति। जिसके अंदर गंभीरता का गुण होता है, वो एक सेकंड में विस्तार को सार में समा देते, जैसे कि बात हुई नहीं है, जैसे पानी के ऊपर लकीर। ये तीसरी बात हमको बुद्धि में रखना है, अगर हमको सेकंड में बिंदी लगाना है तो गंभीरता चाहिए, बचपना नहीं चाहिए। बचपन में क्या होता है, छोटी छोटी बात को बड़ा करना, तो विस्तार में चले जाना। विस्तार माना क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, कहाँ, बस हो गई ना बात, हो गया बस फुल स्टॉप। बाबा कहते ना, माया को आप पूछना चालू करेंगे ना, क्यों आया, कहाँ से आया, तो माया बैठ जाएंगे सुनाने के लिए। तुम क्यों उसको चाय और टोली देते हो, खातरी करते है ना, जब भी हम क्यों क्या करते तो माया की खातरी हो गई तो माया बैठ जाएंगे। अगर हम एक सेकंड में समा लिया, खत्म, हमने पूछा ही नहीं, तो माया का इंसल्ट हो गया ना, वो वापस आएंगी नहीं। तो आप चेक करके देखो, कोई भी बहुत बड़ी बात हो गई हो, हमारा काम क्या है, अगर हम बिंदु स्वरूप की याद में है, बिंदु बाप को याद करते हैं, तो एक सेकंड में हम बिंदी लगा सकते हैं। विस्तार को सार में लाना, उसको ही कहते हैं बिंदी लगाना। ये तीसरी विधि याद रखे। और चौथी विधि बाबा ने बताया है कि वैसे तो हम जानते हैं ना, हम सभी अभी वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी का अर्थ क्या होता है, वाणी से परे जाना। तो अगर हम भूल जाते हैं ना, हम वानप्रस्थ अवस्था में हैं, तभी तो बिंदी नहीं लगता। जीवन में भी चार अवस्थाएं होती है ना, बचपना, युवा, जवान और वृद्ध। तो हम भूल जाते हैं वानप्रस्थी है, तो हम इसलिए छोटी छोटी बात को बुद्धि में विस्तार में कर देते। तो हम सदैव याद रखें कि हम वानप्रस्थी हैं, हमको वाणी से परे जाना है। तो एक सेकंड में वाणी में आना और एक सेकंड में वाणी से परे चले जाना। तो हमको यहाँ ही नहीं रहना है, हमको रहना है ऊपर, ऊपर से नीचे आना है कर्म करने के लिए, और कर्म करने के बाद ऊपर चले जाना है। तो हम कोई भी बात देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम वाणी से हमको परे जाना है। तभी हमारे अंदर वो बेहद का वैराग्य वृत्ति नहीं है। सभी बातों में आसक्ति आ जाती है, तो आसक्तियां जहां आ सकती है वो कहां क्या होता है, माया भी आ सकती है। जहां आ सकती है वहां माया भी आ सकती है। तो हमारी वानप्रस्थ अवस्था कैसा हो गया। तभी तो बाबा कहते ना, आजकल दुनिया वालों को क्या कहते, जितने बूढ़े होते जाते हैं उसके अंदर तृष्णा बढ़ती जाती है। तो हम भले कितने भी साल ज्ञान में हो, अगर हम ये भूल जाते हैं ना, अभी हम वानप्रस्थी हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति नहीं आती। नो, वैराग्य वृत्ति का मतलब क्या है? घृणा रखना नहीं। कोई कोई ऐसा समझ जाते वैराग्य माना किसी के प्रति घृणा भाव रखना, किसी को पसंद नहीं करना, ऐसा नहीं। वैराग्य वृत्ति का मतलब कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। तो आपने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आपको कोई मुश्किल बात होगा ही नहीं, तो कोई व्यर्थ चीजें गए नहीं है आपके मन में, तो आपको मेहनत नहीं लगेगा। ये कौन सी बात याद रखेंगे, हम कौन हैं? वानप्रस्थी हैं। तो वाणी से हमको परे जाना है, तो ये जाने का याद रहता है ना, तो यहाँ रहते हुए भी हमारी बुद्धि ऊपर उठी रहती है। तो हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। आज हम क्या करते, जो बातें नहीं सुनना है वो भी सुन लेते, जो बातें नहीं देखना है वो भी देख लेते हैं, फिर मन ही मन में अपना ही विचार करते रहते, शायद ये होगा, शायद ये होगा। तो उससे क्या हो जाता है, अपना समय सारा व्यर्थ चला जाता है। और पांचवी बात बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैं बता रही थी ना, ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। अभी हम ऊंची पहाड़ी पर जा रहे हैं ना, तो जैसे गाड़ी अभी पहाड़ी पर चढ़ती है तो मेक श्योर करते हैं ना, इंजन अच्छा हो, ब्रेक ठीक हो, नहीं तो ऊपर चढ़ने के बदले नीचे आ जाएंगे ना। तो फुल स्टॉप नहीं लगता है, माना हम ऊपर नहीं जा रहे, नीचे आ रहे हैं, माना हमारी ब्रेक पावरफुल नहीं। कौन सी ब्रेक? संकल्प रूपी ब्रेक। जिसका संकल्प रूपी ब्रेक पावरफुल नहीं है, उसका एक सेकेंड में बिंदी नहीं लग सकता। तो वो संकल्प रूपी ब्रेक को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे आप? जैसे कार मैकेनिक को मालूम पड़ता है ना कि ब्रेक को कैसे फिक्स करना है, हमको भी बाबा मैकेनिक बना देता है, क्योंकि शरीर रूपी कार को आत्मा रूपी ड्राइवर चलाते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को जागृत रखना पड़ेगा, मन रूपी संकल्प रूपी ब्रेक को पावरफुल बनाने के लिए बुद्धि को जागृत रखना पड़ेगा। क्योंकि हम आत्माएं बहुत समय से मन को हमने फ्रीडम दे दिया है, स्वतंत्रता दे दी है, जैसा चाहे वैसा चलो, परंतु अभी अचानक हम मन को कंट्रोल करना चाहते तो मन नहीं मानेगा। परंतु सबसे पहले हमको क्या करना है, बुद्धि को जागृत रखना है। तो जब बुद्धि को जागृत रखेंगे तो क्या हो जाएगा, परखने की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि बुद्धि है परखने की शक्ति ना, तो जब बुद्धि से परखने की शक्ति बढ़ेगा तो हमको समझ में आएगा कि हमारे मन में क्या संकल्प है, ये अच्छा संकल्प है, बुरा है, व्यर्थ है, समर्थ है। पहले तो ये समझ में आवे ना, तो जब बुद्धि जागृत रहेंगे, हमारे परखने की शक्ति यथार्थ होगा, तो हम संकल्प को परख सकेंगे। तो परखने के बाद क्या करना है, निर्णय करना है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो निर्णय कर सकते ना, ये व्यर्थ है, हमको नहीं चाहिए, ये समर्थ है हम रखेंगे। तो ऐसे जब हम मन को शक्तिशाली बना सकते, जो समर्थ संकल्प है उसको ही रखने का, बाकी जो व्यर्थ है असमर्थ है उसको फेंकने का। जैसे चावल गेहूं आप साफ करते हैं ना, क्या करते, उसमें पत्थर आता है मिट्टी आता है तो परख के उसको फेंक देते हैं ना, अलग करते हैं ना। तो हमारी बुद्धि भी हंस के समान हो, हंस जैसा मोती चुभता है, हम भी संकल्प रूपी मोती को अलग करके, तो फिर जब भी हमारे मन में ऐसे अच्छा संकल्प संग्रह हो जाएगा तो मन शक्तिशाली होंगे। नहीं तो मन में ऐसे वैसे संकल्प सब कुछ रख देते हैं ना, तो कमजोर हो जाता है ना मन, और उसका कारण है बुद्धि सोई हुई है, बुद्धि जागृत नहीं है, तो मन में जो आता है वो संस्कार के अनुसार वो सोचता रहेगा। परंतु जब बुद्धि जागृत रहेंगे तो हमारे संकल्प कम चलेगा, परंतु कम संकल्प के अंदर शक्ति जास्ती होंगे। परंतु बुद्धि जागृत कब रह सकता है, जब हम आत्माभिमानी होंगे। अगर हम आत्माभिमानी नहीं है तो बुद्धि जागृत नहीं रह सकता। बुद्धि सोई हुई है, मन अपना काम चलाते रहते हैं। जैसा हमने कल सोचा था आज भी वैसे ही सोचेंगे, एक साल के पहले भी ऐसे ही सोचा था, तो वो संस्कार बन गया ना मन को, तो वो वही चलता रहेगा। परंतु जब अभी हमको ज्ञान मिला है, आत्मा का ज्ञान मिला है, उसको यूज करके आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हुए बुद्धि को जागृत रखना है। तो जितनी बुद्धि जागृत उतना हमारा मन, मन में जो संकल्प चलता है वो हम समर्थ बना सकते। तो इसलिए बाबा ने दोनों बात कही है, पुराने साल पूरा होने के पहले व्यर्थ को खत्म करो। व्यर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, अज्ञान है, अंधकार है। तो समर्थ क्या है, ज्ञान है, शक्ति है। तो इसके लिए व्यर्थ और समर्थ को समझने की बुद्धि चाहिए पहले, तभी तो हम संकल्प को शक्तिशाली बना सकते। तो जब मन में शक्तिशाली संकल्प इकट्ठा हो जाएगा तो हम एक सेकंड में जो बात आई, बुद्धि जागृत है, फिर फुल स्टॉप हम लगा सकते। तभी तो बाबा कहते ना, मन बुद्धि संस्कार तीनों हमारे हाथ में हो, हम उसको जैसा चलाना चाहे वैसे चलाएं। तो दूसरी शब्दों में हम यही कहेंगे, हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो जो स्व के ऊपर राज्य करना जानते हैं वही एक सेकंड में बिंदी लगा सकते। अगर राजा नहीं है, मंत्री का राज्य है, प्रजा का राज्य है, तो हम बिंदी नहीं लगा सकते। लगाना चाहते बिंदी, हो जाते हैं कामा, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख लीजिए, आप स्वराज्य अधिकारी है या प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कभी मन चला रहा है, कभी संस्कार चला रहा है, तो फिर हमारे राज्य में कोई भी शांति, कोई भी सुख नहीं होगा। तो इसलिए बाबा रोज रोज हमको आत्मा का ज्ञान पढ़ाते हैं। क्यों बाबा कहते हैं, आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। अगर हम आत्मा समझते हैं तो बाबा के सिवाय किसी की याद नहीं आ सकते। और आत्मा समझ करके जो बाप को याद करता है उसको तीसरा बिंदी लगाने में मुश्किल नहीं होता। तो पहले तो हम यही, हमारी बुद्धि से ये स्मृति खिसक जाती। चलो कभी स्मृति रहती है परंतु स्मृति स्वरूप नहीं बनते। तो जब तक आत्मिक स्मृति का स्वरूप नहीं बनते तब तक मन के संकल्पों के ऊपर हमारा कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो रूलिंग पावर भी नहीं है। तो बिंदी लगाने के लिए दोनों शक्तियां चाहिए, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और कर्मेंद्रियों के ऊपर रूलिंग पावर, ये दोनों शक्तियां जब हमारे ऊपर हमारे पास होगा तो हम एक सेकंड में जो बात आई खत्म, जैसे पानी के ऊपर लकीर, उसको मन में भी रिपीट नहीं करना है, मुख से तो करना ही नहीं है। आप एक हफ्ते के लिए होमवर्क लो, जो बात हो गई ना, किसी ने कुछ कह दिया आपको, उसको मन में भी नहीं रिपीट करना, मुख से तो करना ही नहीं है दूसरों को। तो बाबा ने एक बार कहा ना, परिस्थिति जो हमारे सामने आती है उसको भी कुछ अकल है, हमको इतना भी अकल नहीं है। क्यों? ड्रामा में कोई भी परिस्थिति आएगी ना, एक ही वार आएगा कलप में, वही परिस्थिति दोबारा नहीं आती है, फिर 5000 बरस के बाद ही आएगा वो परिस्थिति, और हम कितना बेअकल है बताइए। परिस्थिति चली जाती है और उसको हम कितने बार रिपीट करते हैं? 5000 बार, कम से कम 500 बार, चलो 50 बार, तो कौन अकलमंद हो गया? परिस्थिति अकलमंद हो गई ना, उसको अकल है, हमको फिर नहीं आना है, और हम वो चली गई परिस्थिति को 100 बार रिपीट करते दूसरों के सामने और 100 बार मन में रिपीट करते। तो ये हमको परिवर्तन करना है। परिस्थिति चली गई, फिर 5000 बरस के बाद ही उसको आना है, तो हमको भी न मन में रिपीट करना है न मुख से, तभी हम समझ सकते हैं हम स्वराज्य अधिकारी है, मैं आत्मा अपने राज्य अपने ऊपर राज्य कर रहा हूँ। तो ये 5 बातें याद रहेगा, जास्ती नहीं सुनाई है, 5 ही बातें, 5 अंगुली है ना, तो 5 बातें 5 अंगुली में याद करने में कितना सहज है। माता ही सुनाओ, कौन सी बात सुनी? भूख लग रही है ना, नींद आ रही है, पहली बात कौन सी? बस एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत करेक्ट है, कल्याणकारी है, अच्छा है, बिंदी बस। और दूसरी बात, हाँ, कोई भी शक्ति कमी ना हो, जिस कमी जो शक्ति कमी है वही परिस्थिति आपके सामने आती है, समझ जाना, वो हमको धारण करने के लिए इशारा दे रहा है। फुल स्टॉक तो फुल स्टॉप। और तीसरी बात, नहीं नहीं विस्तार को सार में, कोई भी बात में विस्तार में नहीं चले जाना। कहते ना, इसने किया, उसने किया, मैंने किया, वो ये वो बहुत होशियार है ना दूसरों के ऊपर दोष लगाने में, वो नहीं। और चौथी बात, वाणी से, एक सेकंड में वाणी में आना, दूसरे सेकंड में वाणी से परे चले जाना। वानप्रस्थ अवस्था माना बेहद के वैराग्य वृत्ति, कोई भी बात देखते हुए भी नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनना, कि मेरा मेरा जरूरत नहीं है ना, अगर मेरे को कोई जरूरत है मेरे को बुला करके कोई बताएंगे, मैं क्यों सब बातों में ये भी जानू वो भी जानू ये भी देखू वो भी देखू ये इच्छा क्यों रखू। और पांचवी बात, ब्रेक पावरफुल, सबसे बड़ी बात, अगर ब्रेक आपकी लूज होंगी तो आज लगाएंगी तो 3 दिन के बाद लगेगा बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा ना, एक्सीडेंट माना किसी को कुछ गुस्सा कर देंगे, किसी को दोष लगा देंगे, किसी के ऊपर उलाना दे देंगे, ये एक्सीडेंट है ना। तो इसलिए आज से लेकर विशेष चार्ट रखना, एक एक घंटे में चेक करना कि एक बात में ये दो बात हो जाएगा। अगर हम बिंदी लगाने की कला में प्रवीण बन जाएंगे तो हमारा व्यर्थ ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ होगा ही नहीं ना बिंदी लगाने की कला आ जाने से, तो हम समर्थ आत्माएं बन जाएंगे। तो ऐसे फास्ट जाने का सब मिलकर के हम पुरुषार्थ करें, ठीक है? बहुत सिंपल बातें सुनाई है, याद रहेगा ना, चलते चलते भूल जाएंगे तो नहीं, तो एक दो को याद दिलाना, और एक दो को याद दिलाते पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना। ओम शांति। अभी अभी प्रैक्टिस करो, अभी अभी एक सेकंड में जहां है बस वर्तमान समय में रहना, बीती को नहीं, बाद में नहीं, अभी 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 वो बिंदी, अभी अभी बिंदी।